ओम शांति। निराकार परमात्मा शिव, जिनकी साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के साथ जिन महान आत्माओं ने 14 साल तपस्या की और उस तपस्या का तेज अपने में समाये हुए, जो केवल 10 साल 12 साल की उम्र में भगवान को पहचान कर उसकी पवित्र गोद में आ गए, और जिसे रत्नागर शिव बाबा ने ज्ञान योग से श्रृंगार कर पूरे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश जिनके द्वारा, ये आध्यात्मिक ज्ञान की अलख जिनके द्वारा जगाई, ऐसे हमारे आदि रत्न, हम सभी इन आदि रत्नों के जीवन के जो योग की ऊंचाइयां हैं और जो ज्ञान की गहराइयां हैं, इनको जानने, अनुभव करने के लिए और उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम जो आज आयोजित है, इस कार्यक्रम में आप सभी का और हमारे आदरणीय सुभाष भाई जी का हम दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आप सभी का। आज पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व की निगाह इस आध्यात्मिक संस्था की ओर है, और हम सभी भली भांति परिचित हैं भारत में, खासकर चाहे राजनीतिक क्षेत्र के नेताएं हो, धार्मिक नेताएं हो या कोई भी सामाजिक संस्थाएं हो, हरेक की आशा की किरण है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। हरेक को ये महसूस होता है कि यही सुखमय संसार आज वर्तमान में हरेक की उम्मीदें, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, हरेक को यही है कि ये ब्रह्मा कुमारी बहनें, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय पूरे विश्व में सुखमय संसार परिवर्तन करेगा, तो यही, इसी सकारात्मक ऊर्जा से विश्व परिवर्तन होगा, ऐसा हरेक का विश्वास। और इस विश्वास के पीछे किन की मेहनत है? हमारे आदि रत्नों की, उनका त्याग, उनका तपस्या, उनकी अथक सेवाओं के कारण आज ये स्वरूप बना है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो हम सभी आगे इस कड़ी में, हम सभी पतित पावन ज्ञान सागर की बहुत लाडले बच्चे, सच्ची ज्ञान गंगा, हमारी आदरणीय राजयोगिनी गंगे दादी के जीवन के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि दादी का पवित्र निर्मल जीवन, जिन्होंने लाखों परिवारों को कमल पुष्प के समान पवित्र जीवन जीने की जिन्हें प्रेरणा दी, ऐसी हमारी गंगे दादी, जिनके बारे में हम सभी, हमारे संस्था के वरिष्ठ भाई आदरणीय सुभाष भाई जी, जो इन दादियों से भली भांति परिचित हैं, पिछले 35 वर्षों से आप इनके अंग संग अपना जीवन आपने इनको देख के ही बिताया है, इनसे प्रेरणा ली है, तो हम दादी के जीवन से जुड़े हुए अविस्मरणीय प्रसंगों को, उनके जीवन को हम जानेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारने का संकल्प करेंगे। तो मैं सबसे पहले भाई साहब से ये जानना चाहूंगा कि दादी का जन्म कहाँ हुआ और दादी के बचपन की बातें हमें थोड़े से बताएं।
ओम शांति। हमारी आदरणीय गंगे दादी, वैसे तो आप सभी को पता है गंगे दादी और मनोहर दादी की बहुत ही दोस्ती थी, हर हर गंगे बाबा उनके नाम से पुकारते थे, लेकिन बाबा ने उनको अलौकिक नाम दिया था, आत्म इंद्रा जी, लेकिन ज़्यादा जो प्रसिद्ध नाम रहा गंगे दादी के नाम से, क्योंकि गंगा नदी है और नदियाँ कैसे सबको सुख देती है। वैसे गंगे दादी का जन्म 1926 में सिंध हैदराबाद। उनका परिवार बहुत ही संपन्न था, धार्मिक था, घर में सारा वातावरण भक्ति का था, और इस कारण गंगे दादी के ऊपर उसका बहुत असर पड़ा था। जब भी कोई बात होती तो उनको भागवत गीता बहुत पसंद थी, तो वो भागवत गीता पढ़ते थे, और उसमें जो कृष्ण के जो किस्से थे, गोपियों के किस्से थे, तो उनको मन में आता था ऐसा क्यों नहीं कि मैं ही गोपी बन जाती, मैं ही गोपी होती, ऐसे इनके अंदर मन में बातें चलती थी। लेकिन जब यह सत्संग चालू हुआ ओम मंडली का, तो उनके पड़ोस से एक कमल सुंदरी दादी थी, वो सत्संग में जाती थी, तो उन्होंने एक बार दादी को बोला कि चलो वो बहुत अच्छा है। तो जब गंगे दादी उनके साथ गई सत्संग में, तो पहली बार में जब ओम की ध्वनि शुरू हुई, तो पहली बार में ही उनको जो ट्रांस का साथ ट्रांस में चले गए, और ट्रांस में उनको उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जो उनका आराध्य था, श्री कृष्ण उनका दीदार हो गया, तो वो तो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि जो कुछ मुझे चाहिए वो मिल गया, क्योंकि वो श्री कृष्ण की भक्ति भी करते थे और श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, और इस कारण से बाबा के प्रति उनका लगाव बढ़ता गया और सत्संग में वो शुरुआत हो गई। और जब सत्संग की जो शुरुआत हुई, उसी समय जैसे कि वो दीदार हो गया, और घर वालों से, परिवार वालों से छुट्टी लेके फिर दादी ने पढ़ाई भी वहाँ शुरू किया, तो इस प्रकार से इनकी शुरुआत हुई।
मैंने पढ़ाई जो है वो क्या स्वरूप था पढ़ाई का उस समय? मैंने
एक्चुअली जब वो सत्संग में जाना शुरू किया, तो वहाँ बाबा ने एक स्कूल खोला था बच्चों के लिए, बोर्डिंग स्कूल था, तो गंगे दादी जी ने अपने मम्मी पापा को बोला कि वहाँ इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, क्योंकि उस समय हमारे चंद्रमन दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी ये लोग पढ़ाते थे, तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, बहुत अच्छी पालना होती थी। तो ये देखते हुए उनके माँ बाप ने भी उनको छुट्टी दिया कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब छुट्टी दिया, थोड़े दिन निकल गए, तो क्या हुआ, मित्र संबंधी को पता चला कि ये जो ओम मंडली है वो थोड़ा अलग चीज है, बच्चों को फुसला के बहला के ब्रह्मा कुमारी ऐसे बना रहे हैं, तो इस प्रकार से तो वो थोड़ा सा फिर वो निगेटिविटी शुरू हुई थी, फिर थोड़ा थोड़ा उनको बंधन भी आया कि नहीं स्कूल में नहीं जाना, इस प्रकार से शुरुआत हुई थी।
हमने देखा कि गंगे दादी का जो भगवान के प्रति प्यार और ईश्वर के प्रति जो जीवन को समर्पण करने की भावना थी, कहते ना हर सत्य मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर विघ्न आते हैं, तो हमने ये दादी का जैसे हमने टाइटल भी रखा सहनशीलता की मूर्त, क्योंकि हमने ये सुना पढ़ा और जाना है बड़ों से कि गंगे दादी ने बहुत सहन किया इस मार्ग पे चलते, और इवन परिवार वालों ने तो कोई जादू हो गया करके उन पे झाड़ फूक के लिए कुछ लोगों को बुलवाया था ऐसा।
जब उनको लगा कि ये जो बच्ची है बहुत ही ज्यादा दादा के ऊपर, मतलब ये सत्संग में जाने लगी है, उस समय ब्रह्मा बाबा को दादा बोलते थे, तो उनको थोड़ा अंदर से आया कि ये ठीक नहीं है, उसकी लगन देखते हुए फिर उनको बंधन शुरू किया, और बंधन करके फिर एक सूरदास करके थे वो जो तांत्रिक आदि करते, वो उनको आंखों से दिखता भी नहीं था, तो उनको लाया गया, उनके पिताजी वो सूरदास जी को लाए और कहा ये हमारी बच्ची है ना, इसके ऊपर वो दादा का भूत चढ़ा हुआ है, उसको उतार दो। तो वो रोज आते थे वहाँ, रोज आते थे, झाड़ फूक करते थे और कुछ पिलाते भी थे उनको, कुछ पानी में डाल के वो पी लेती थी, लेकिन बाद में एक दिन, दो दिन, एक मास हो गया, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो फिर वो सूरदास जी बोले यार ये तो परमात्मा जादू लगाए इसको, ये तो मेरे बस का काम नहीं है, तो फिर वो भी बंद कर दिया उन्होंने। तो ये बाबा का मतलब सच्चा जादू था कि बाकी सारे जादू खत्म हो गए थे उसके सामने,
वो जादू उतारने के लिए बुलाए थे उन पर ही परमात्मा जादू लग गया होगा ऐसा है ना। परिवार में उनके भाई जो थे वो काफी उनके सहयोगी थे,
उनके बड़े भाई थे अफ्रीका में थे, और जब वो अफ्रीका से आए घर में आए तो देखा मेरे, और वो गंगे दादी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार था, तो देखा कि मेरे बहन को तो बहुत बंधन डाल रहे, इधर नहीं जाओ, घर से बाहर नहीं जाना, ये नहीं जाना। तो जब वो भाई आया तो गंगे दादी ने बताया, देखो मैं ना सिनेमा देखती है, ना गंदा खाती है, ना फैशन करती है, कुछ भी ऐसे कोई सत्संग दूसरे जो पार्टी वार्टी है उसमें भी नहीं जाती, मैं तो सिर्फ ये बाबा का सत्संग है उसमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते उसमें जाते है, और उसमें भी मम्मी पापा मना करते। तो वो जो भाई थे उन्होंने समझाया कि सत्संग तो अच्छी चीज है, अच्छा सिखाते, इसको मना नहीं करो। तो वो जरा उनको बंधन जरा कम हो गया और सत्संग में जाने की छुट्टी मिली।
उनको शारीरिक कष्ट भी देते थे, कुछ जंजीरों से बांधने आदि की भी घटनाएं हुई उनके साथ।
हाँ, जब
और किसी दादी के साथ नहीं, शायद इनके साथ ही शारीरिक भी बहुत यातना और उनको दी गई।
जब उनका भाई जब विदेश वापिस चले गए तो फिर इन्होंने इनके माँ को संकल्प आया गंगे दादी के कि ये अभी बड़ी होती जा रही है, इसका भूत तो उतर नहीं रहा है, क्या करते इसकी शादी करते, तो शादी करेंगे तो खान पान भी बदल जाएगा, थोड़ा फिल्म विलम देखेगी, बाहर जाएगी, इस प्रकार से। तो इसको दबाव डालना शुरू किया कि आपको शादी करनी है। तो गंगे दादी ने कहा कि नहीं, मेरी तो गिरधर गोपाल एक और कोई नहीं, मैं श्री कृष्ण के साथ शादी हो गई, मेरा मोहन एक ही है। तो जब ये बात सामने आई तो उनको फिर पिटाई शुरू होगी, अच्छी तरह से पिटाई। जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी तब तक तेरे को पीटते रहेंगे, पीटते रहेंगे। तो लेकिन उन्हों का तो एक ही था कि नहीं, मैं तो सत्संग में जाऊंगी, मैं बाबा की बच्ची हूँ और मैं शादी नहीं करूंगी। ये जब देखा तो उन्हों को क्या किया, जंजीरों से बांध के एक जो कोठड़ी थी ना, मतलब एक रूम था जिसमें लाइट नहीं कुछ नहीं, ऐसे कोठड़ी में डाल दिया कि देखते कैसे निकल। फिर उनको 3 दिन मतलब भोजन नहीं दिया, एकदम बंद करके रख दिया। फिर 3 दिन के बाद खोला तो फिर पूछा, अब बताओ तुम्हारा क्या निर्णय है। तो जब 3 दिन अंदर काल कोठड़ी में थी तो उस समय क्या हुआ, वो बाबा का प्रति और प्यार बढ़ गया, और प्यार बढ़ गया, और उस समय उनको फिर श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो उनको और प्यास भूख वो तो खत्म हो गई, भाई श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। तो जब उनको 3 दिन के बाद बाहर बोला, तुम्हारा क्या निर्णय, तो बोला नहीं मेरा तो वही, मैं चाहे मर भी जाऊं, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी और मैं बाबा की हूँ, बाबा की रहूंगी, मेरा तो श्री कृष्ण ही है सब कुछ। इस प्रकार से बहुत सारे सितम उनके ऊपर ढाए गए।
ये तो लगता है वही भागवत की बात आ गई कि यशोदा वासुदेव जो कंस के द्वारा जैसे वो उनको बंद किया हुआ था और वहां पे उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार आदि। जैसे कहते ना कि हनुमान को जब रावण की कैद में कहते ना सीता, तो हनुमान के द्वारा उनको मैसेज मिलता था, तो वैसे ही इनको भी मैसेज देने अंदर जाते थे दादी प्रकाशमणि, जैसे हनुमान के रूप में उनकी
क्या हुआ। जब ये पता चला कि हमारी गंगे दादी को बहुत सितम, बहुत तड़प रही है, बहुत उसको मार दे रहे, जंजीर से बांधा हुआ है,
मुरली आदि भी नहीं, ज्ञान का भी कुछ मिलता नहीं।
हाँ, तो क्या हुआ, फिर ये एक ग्रुप बना, प्रकाशमणि दादी का एक ग्रुप था, उन्होंने प्लान किया क्या करना चाहिए अभी। तो अलग अलग रूप लेके, अलग अलग रूप लेके, तो प्रकाशमणि दादी जी जो उनका मकान था उसके ऊपर एक किराया का मकान कोई किसी ने लिया था, उससे दोस्ती किया, और उनके पास गए मिले, और वो जो धुराड़ी होती धूर धुआ जाता है ना, हाँ, उस धुराड़ी में से वो गंगे दादी से कांटेक्ट किया, और दादी का जो लेटर है, दादी का लेटर और बाबा की जो मतलब बाबा का लेटर और मुरली, वो धुराड़ी से उनके पास पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से एक ग्रुप बन गया कि जो भी ऐसी बंधन वाली दादियां है उनको हमें बाबा का ज्ञान अमृत पिलाना है। तो कोई कोई क्या करता था, सब्जी बेचने का टोकरी लेते थे, सब्जी लो सब्जी ऐसा करके जाते थे, वो जिस घर में उधर जाके सब्जी बेचते थे और वहीं से मुरली देते थे। तो कोई जैसे बंगार वाले होते, वहाँ बंगार दे दो ऐसा करके जाते थे, तो जानबूझ के भाई ये भी तो बंगार है ये करके अंदर तक चले जाते थे, और वो समझ जाते थे, जैसे जो दादी जैसे गंगे दादी समझ जाती थी ये बंगार वाली आवाज तो पहचानते थे ना, ये हमारे लिए आए, तो बराबर ऐसे जगह खड़े रहते थे और उनको बाबा की मुरली मिल जाती थी। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रकाशमणि दादी जी है, जैसे नहीं हनुमान का काम किया, और जो जो बंधन वाली माताएं थी, बंधन वाली दादियां थी, उनके पास जाके बाबा का जो ज्ञान अमृत कैसे पिलाना है वो प्लान करती थी।
ये वो दौर था जब माताओं बहनों को कोई स्वतंत्रता नहीं थी, और खासकर वो जिस समाज से बिलोंग करते थे उनको तो और भी ये चीजें नहीं थी। तो वास्तव में बाबा की ये युक्तियां और उनके साथ जो ये पवित्र आत्माएं जो साथ में उनके द्वारा कैसे इन आत्माओं को वो पालना दी, आखिर में इस बंधन से उन्हें मुक्ति कैसे मिली? फिर
पहले तो क्या था, उनकी जो सिस्टर थी वो कहीं बाहर विदेश में थी, और वो आई और वो देखा उसका हालत, इसको जंजीर से बांधा है, मेरी बहन को जंजीर से बांधा है इस प्रकार से, उसको खाना नहीं दे रहे, ये क्या करे। वो अपने माँ बाप को खूब डांटा फटकारा, और वो अपने गंगे दादी को अपने साथ लेके गई, उधर साथ लेके गई, और उसके बाद क्या हुआ, वो ओम मंडली जो एंटी ओम मंडली है ना बहुत पावरफुल होती गई, बहुत पावरफुल होती गई। तो उन्होंने सबको न्यूज दिया, देखो अगर हम अपनी माँ बहन बेटी को बचाना है तो हम सबको भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, सबको वो कलेक्टर ऑफिस के साथ, और उस समय ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार के सामने हमको भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, तो वो सब लोग भूख हड़ताल पे रहेगी। तो फिर वो ब्रिटिश सरकार भी है ना परेशान होगी, अब क्या किया जाए, ये क्या है, ये सत्संग को क्यों नहीं करने दिए जा रहे, उनको क्या तकलीफ है, ये इतना सब करके अपना घर बार छोड़ के वो दादा के पास क्यों जा रही है। तो इस प्रकार जब बात हुई तो एक लोहे के व्यापारी थे, बहुत बड़े लोहे के व्यापारी थे, और तो उनके पास, उनका नाम शिवरतन था, तो उन वो नामी ग्रामी थे, तो ब्रिटिश सरकार ने उनको सामने रखा, आप जाओ इनके पूछो। तो वो परिवार वाले और ये हमारे गंगे दादी, मनोहर दादी और एक कमल सुंदरी दादी थे, तीन दादियों को उनके सामने जवाब देना था। तो जब ये परिवार वाले एक तरफ और एक वो प्रश्न उत्तर शुरू हो गया, भाई आप वहाँ क्यों जाते, तो उन्होंने कहा यह तो भगवान का ज्ञान है, ये हमें बहुत आनंद मिलता है, सुख मिलता है, और हम तो स्वर्ग बनाने की बात कर रहे, बाबा हमको सतयुग बनाने की बातें कर रहे, तो ऐसे बहुत अच्छी 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 बातें जब बताई, तो इनकी सुनवानी तीन दिन चली। तो चौथे दिन इनका रिजल्ट डिक्लेयर करना था, तीन दिन के बाद चौथा दिन आया, तो भाई क्या डिसीजन क्या हो गया। तो चौथे दिन डिसीजन आया कि ये तो देविया है, ये तो भारत को स्वर्ग बनाने का काम कर रही है, ये तो बहुत महान विभूतियां है, तो इनको कोई भी बंधन नहीं डाले, इनको जो कर रहे हैं वो करने दो, ऐसे सारे न्यूज़पेपर में आ गया, सारे सिंध में न्यूज़पेपर में आया। और उसके बाद फिर वो उन्होंने पीछे मतलब ये जो आंटी ओम मंडली थी वो पीछे हट गई, और फिर गंगे दादी को रास्ता खुला मिल गया, और फिर उसके बाद तो गंगे दादी यज्ञ में पहुंच गए बाबा के साथ। तब से
जैसे हमने बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा तो थे ही, पर ब्रह्मा बाबा भी 10-12 साल की दादियां, लेकिन एक एक दादी की विशेषताओं को जैसे बाबा को पहले से ही पता था, और किस दादी को कहाँ भेजना है किस सेवा में, जैसे बाबा बचपन से ही उनको तैयार करता था। हमने सुना गंगे दादी को बाबा एक एक टॉपिक देकर भाषण तैयार कराते थे। दादी को भी नहीं पता होगा कि उनको यूपी, जो साधु संतों का अखाड़ा महामंडलेश्वरों के बीच, माना पूरा यूपी ऐसा है जो ज्ञान का, और तो दादी को जैसे कि पहले से ही बाबा ने जैसे तैयार किया उनके भविष्य को देखते हुए। तो दादियों को जब और खास हम हरगंगे दादी जैसे मनोहर दादी, और तो दादियों को जब सेवा में पहली पहली बार भेजा हमने, यमुना के घाट का हमने सुना है।
वैसे हमारे जो गंगे दादी जी और मनोहर दादी की यज्ञ में भी अच्छी दोस्ती थी, कोई लेन देन करना, मिलना, ये करना, तो बाबा भी उनको
से पहले भी नजदीक रहे होंगे,
तो ज्ञान में आने का और नजदीक रहे, और उन मनोहर दादी को बंधन होगा, इनको भी बंधन, तो अच्छी दोस्ती थी। तो बाबा इनको चिढ़ाता था भी, बोले हर हर गंगे ऐसा करके। तो और फिर बाबा ने सोचा होगा ये दोनों है तो दोनों को सेवा में, और वो भी आपस में कि इसको भेजे तो मैं जाऊं, उसको ऐसा हो जाता था उनका। तो जैसे हम लोग की भी दोस्ती होती है तो ऐसा होता है ना। तो क्या हुआ, दिल्ली बाबा ने इनको दोनों को भेजा दिल्ली। तो दिल्ली
पहली बार
दिल्ली सेवा में भेजा। तो अभी उस समय कोई ब्रह्मा कुमारी को थोड़ी कोई जानता था, कोई सेंटर या अभी तो हम लोग फोन करते हम आ रहे हमारा भोजन तैयार रखना ये करना, नहीं उस समय तो कुछ भी नहीं था। अब बाबा के भरोसे बाबा ने भेजा, चलो भाई हाँ, पिताश्री ने सेवा के लिए भेजा, बस ये बात करते 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 वो दिल्ली पहुंचे। अब दिल्ली जाएंगे तो जाएंगे का, स्टेशन उतरे तो फिर सोचा होगा या यहाँ जो जमुना किनारे कुछ भक्त लोग तो वहीं आते हैं ना, वही भक्ति विक्ति पूजा विजा करने के लिए। तो धीरे धीरे वो जमुना के कंटे पर पहुंचे। जब जमुना कंटे पे पहुंचे तो देखा यह एक मंदिर है, एक छोटा सा, और मंदिर के आगे ना एक धर्मशाला जैसे होता है वहां था, लेकिन उसकी विशेषता ये थी दो दीवार, इधर एक दीवार इधर एक दीवार, और इधर एक दरवाजा इधर एक दरवाजा, लेकिन उसमें दरवाजा नहीं, मतलब खुला। अब खुला था तो अब क्या करे, और तो कोई जगह ही नहीं है। तो उस मकान में, मतलब दो तरफ खुला था, उस मकान में अभी कुछ खाने पीने का तो कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत जो होता था वो खाते थे, और जो भी आते जाते थे उनको ज्ञान सुनाते थे, लेकिन दिन तो उनका गुजर जाता था, लेकिन रात कैसे गुजरे। तो दोनों बहनें इतनी अच्छी, दोनों भी स्मार्ट दादियां थी, तो दोनों बहनें तो क्या करती थी, एक बहन सोती थी तो दूसरी जागती थी, पहरा देती थी, है ना, तो ताकि भाई सेफ्टी भी रहे, और पहरा देती थी। तो लेकिन इतना नदी के किनारे कोई नहीं, कैसे। तो क्या हुआ, एक आदमी ने देखा ये दो बहनें यहाँ है करके। तो वो जो भाई था ना, वो ऐसे दूर से ऐसे चक्कर काटता रहता था, तो दादी देखती थी ये जो कोई भाई है ना, ये बार बार चक्री काट रहा है, इधर कौन है पता नहीं, ऐसे ऐसे तो ऐसे चक्री काटता रहता। तो ये दादी अब भी एक दिन दो दिन ऐसे दिन निकल गए, 10-12 दिन निकल गए। 10-12 दिन के बाद क्या हुआ, 15-20 लोग ढोल लेजिम ऐसे आवाज करते करते करते, दादियों ने देखा ये कहाँ जा रहे पता नहीं,
उनकी तरफ ही आ रहे,
वो कहा ये तो धीरे धीरे इधर हमारे तरफ ही आ रहे, इधर ही आ रहे। तो देखा तो धीरे धीरे तो सामने आ गए, तो सब उनके पास नारियल था, फल फ्रूट ऐसा बहुत सारी चीजें, नारियल दादी के सामने रखा। तो दोनों दादी बोलते नहीं हम तो ये नहीं लेते, हमको नहीं। बोला नहीं दा, आप पता, आप बहुत महान हो, आप देविया हो, आप कोई साधारण नहीं हो। तो वो समझ में नहीं आया क्यों ऐसा कह रहे हो। तो बोला कि आपको पता है जो रात को जो चक्कर लगाता हूं ना, वो मैं ही हूं। अच्छा, बोला मैं पहलवान हूं, और मैंने भगवान को प्रार्थना की थी, अगर ये सचमुच सच्ची देविया है ना, तो आज मैं कुश्ती जीत लूंगा, और आज मैंने कुश्ती जीत लिया इसलिए मैं आया हूं इधर। तो देखो बाबा अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखता है कि वो पहलवान था, वो जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, और उसको बाबा ने टच कराया कि ये मेरी बच्चिया है, इसका संभाल करो, इसका पहरा दो। तो वो पूरा रात सोता नहीं था कि ये अकेली दो लड़कियां हैं, दो बहने हैं, इतना यंग बहने, कोई भी आएगा उनको कोई शराबी आएगा, कोई तकलीफ देगा। तो वो पूरी रात चारों तरफ चक्कर लगाता था, और वो बाबा ने जैसे उसको कुछ साक्षात्कार कराया, और जब वो जीत गया तो उसका विश्वास पैदा हो गया। और जब जब 10-15 दिन के बाद जब वो आया, तो उन्होंने फिर, वो पहलवान थे, वो हमारे जो वेद पहलवान थे ना, उनके पिताजी या कोई ऐसे थे, तो उन्होंने कहा कि आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, आपको हम एक रूम देते, आप रूम में वहां रहो, भले सारा दिन आपको जहां भी सेवा करना वो सेवा करो, लेकिन आपको बंद रूम में। फिर वो उन्होंने रूम दिया, फिर वहां से ये जो दिल्ली की सेवा, जो सेंटर की सेवा है ना, वहां से शुरू हुई।
जैसे दादी के बारे में हम ये सुनते थे कि दादी अंत तक भी, जैसे दादी ने 2004 में शरीर छोड़ा, दादी अंत तक भी कपड़े को फट भी जाता था तो खुद सिलाई करके उसको पहनती थी। कहते अंत में जो लास्ट में उन्होंने शरीर छोड़ा था, उस समय भी जो उनकी ड्रेस थी ऐसी चत्तियों में ना, जो उसको रिपेयर कर करके पहनने का, तो दादी ने जैसे ना इकोनॉमी का अवतार, दादियों ने जैसे एक एक पैसे को जोड़ के संभाल के खुद पे खर्च न करके, और जैसे बहने भी होती थी सेंटर पे, तो दादी को कोई भी बहन जरा भी उदास दिखती थी तो तुरंत दादी को ख्याल आता था कि क्यों उदास है, तो फिर और बहनों को फिर क्या है, इनको क्या चाहिए, माना किसी के चेहरे पे हल्की भी उदासी दादी देख नहीं पाती थी कि ये समर्पित है, क्या इनको कमी है, अगर कोई कमी है तो दादी किसी भी रूप से उसको भरपूर करने की कोशिश करती थी।
और कई बार हमको वहाँ इंद्रप्रस्थ जाने का मौका मिलता था, क्योंकि दादी है ना इंद्रप्रस्थ भी रहती थी, तो हम देखते थे दादी कई बार है ना, वो कभी वो बटन लगाते, कभी वो अपना सिलाई करती है अपने हाथों से ऐसे ऐसे, क्योंकि वो विद्याबेन जो कुछ दिन पहले शरीर छोड़े उनके साथ ही रहती थी।
त्याग में जो जीवन है उनका, और
जी जी,
और हमने सुना कि बाबा ने उन्हें टाइटल दिया था विघ्न विनाशक का टाइटल, और 1984 में हमने सुना कि सेंटर पे आग भी लगा दी गई थी, लेकिन वो तो ऐसे, मैंने बाबा की मदद के उनके अनुभव कुछ बताइए। जो
वहाँ जब कानपुर में, जब मैं समझता हूँ इसका जो सिख समुदाय और जो इंदिरा गांधी का जब हुआ था, उस समय बहुत आग लगी थी, फिर कुछ थोड़ा शांत होने के बाद वहाँ जो सरदार जी थे, पड़ोस में थे सरदार जी, वो दादी को मिलने आए, और दादी को बोला कि दादी ये जो मकान है, 40 कमरे का शायद मकान था उस समय, तो बहुत बड़ी बात थी, दादी ये मकान आपको ही लेना है, आप जो भी हमको, मतलब बहुत सस्ते में, वो शायद गोविंदपुरी या कुछ ऐसा नाम था, वो जब समाचार आता था मधुबन में, प्रकाशमिनी दादी सबको बताती थी कि ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो फिर वो मकान के लिए दादी को यस करा दिया था कि इतना सस्ता इतना अच्छा मकान, क्योंकि उन्होंने अपने लिए बनाया था, लेकिन जब ये जो बातें हो रही थी तो उनको थोड़ा डर लग गया, तो उन्होंने फिर ये मकान दिया था उधर। तो इस प्रकार से जो त्याग तपस्या करते, तो सेवा कैसे अपने आप हो जाती वो हमने देखा। और मधुबन में उनके जो जोन के हैं, जैसे हमारे अर्जुन भाई है, जमुना प्रसाद भाई है, शिव कुमार भाई है, और मतलब बहुत सारे कानपुर से निकले हुए रतन है, तो ये सारा हमारे गंगे दादी की विशेष पालना, और जो भी हमारे महात्मा लोग थे, क्योंकि वहाँ साधु संन्यासी महात्मा, तो तो महात्माओं को बहुत अच्छी तरह से ज्ञान समझाने की कला थी उनके अंदर, बहुत ही अच्छी तरह से। इसलिए वो धार्मिक विंग की चेयरपर्सन भी उनको बनाया था, क्योंकि बचपन से भागवत पढ़ना और घर में एक वातावरण
तैयार किया था,
वातावरण था ऐसे। तो इस प्रकार से वो वातावरण के कारण उनको सारा कंटेस्ट था किस महात्मा को क्या। तो सबसे ज्यादा महात्माएं जो है यूपी से आते थे, और उसको दादी बहुत पालना। जो मधुबन में एक बार संत सम्मेलन था, पहली बार संत सम्मेलन था, तो उसमें बहुत सारे संत आए। ओम शांति भवन बना ही था, 83-84 की बात हुई, तो दादी जी ने बहुत उमंग उत्साह से वो संत सम्मेलन रखा था। तो उसमें से बहुत सारे दादी के तरफ से यूपी से संत आए थे। तो हमें याद है जब संत पहले दिन आए थे, सारे महात्मा लोग, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, एकदम अपने अपने नशे में एकदम, क्योंकि उनको भी लग दो चार चेले पीछे वो झंडा वंडा सब लगा कैसे। तो जब पहले दिन रिसेप्शन हो गया, रिसेप्शन होने के बाद वो कमरे में गए, तो हमारी जो दादी जी को जैसे प्रेरणा आई, और गंगे दादी, ये सब दादियाँ, गुलजार दादी, चंद्रमन दादी, मनोहर दादी, सब दादियाँ, 10-12 दादियाँ, वो सुखधाम में गई। सुखधाम में जाके हर एक महात्मा जी के पास, जैसे दादियाँ जा रही थी, महात्मा को पता चला कि यहाँ के जो मुख्य प्रशासक हमको मिलने आ रहे, तो ये सब दादियाँ, गंगे दादी, ये सब एक एक महात्मा जी के पास गए और हाथ जोड़ के कहा, भाई कुछ तकलीफ तो नहीं है आप, तो हमारा तो आश्रम छोटा है, आपको तो तकलीफ तो नहीं, भोजन का कोई तकलीफ तो नहीं है ऐसे। इतना वो इतना पिघल गए, पहले तो दिन बोलते हैं हमारा रसोई अलग, हम सिंगोड़े का आटे का ये बनाए हलवा खाएंगे, हम तो इसमें घी की पूरी खाएंगे, ऐसे ऐसे। तो दूसरे दिन जैसे ही ये रात को दादियाँ सब मिली सब महात्माओं को, तो दूसरे दिन जब स्टेज से सब दादी माँ दादी माँ दादी माँ, जो महात्माएं बोलते थे ना कि वो कुर्सी पे राखी बांध के जाओ कुर्सी के लिए, वो भी पिघल गए, बोलते नहीं ये तो हमारी बहने हैं, हमारी दादी थोड़ी है, ये मेरी बहन है या मेरी बहने हैं, ऐसा करके पूरा वातावरण में। और एक इनकी विशेषता होती है, अगर एक महात्मा महिमा करे तो दूसरा और ज्यादा करता है, तीसरा और ज्यादा करता है। तो पूरे मधुबन में दादी के लिए, दादियों के लिए, ये हमारी दादी माँ है, ये हमारी दादी माँ है, इस प्रकार की पूरा वातावरण बन गया। तो ये सारी हमने देखा, बहुत सारी मेहनत हमारे गंगे दादी की थी इसमें।
दादियों की पवित्र जीवन का प्रभाव सब पर बहुत पड़ता था, और हम ये सुनते हैं कि दादी से ब्रह्मा बाबा की भासना, और इवन जैसे दादी के स्वास्थ्य के कारण एक आध सब्जी अलग से बनती थी या रोटियां बनती थी, कई बार दादी अपनी थाली में से रोटियां या सब्जी वो भी कहती थी पहले इनको खिलाओ, मना वो अपनी थाली में से भी रोटी और सब्जी जो उनके लिए है वो भी निकाल के वो दे देती थी। तो दादियों का जीवन जैसे हर एक आत्मा को कैसे दें, कैसे पालना दें। और हमने सुना कि कानपुर में तो विदेशी भी बहुत दौड़ दौड़ के कानपुर में मना दादी से, क्योंकि दादी का व्यक्तित्व उनको आकर्षित करता था, क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं और यही साकार स्वरूप हमारे आगे थे। तो विदेशियों की सेवा में भी गंगे दादी का योगदान रहा।
हाँ, विदेशियों की सेवा का भी योगदान रहा, लेकिन उसके पहले एक किस्सा मैं सुनाता हूँ कि दादी जी को बाबा ने, तो दोनों दादियों को, गंगे दादी और मनोहर दादी को जोधपुर भेजा सेवा के लिए। जोधपुर भेजा तो 8-10 दिन वहाँ सेवा किया, फिर वो वापिस आ रहे थे, माउंट आबू वापिस आ रहे थे। तो क्या हुआ, जब ट्रेन में चढ़ गए, इतने में दो भाई आए, बोलते दादी जी आप इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हो और हम तो आपके ज्ञान से वंचित रह गए, आपको अभी हमारे परिवार के वो भी ज्ञान सुनाना है, आपको हम नहीं जाने देंगे। बड़े मतलब बहुत भावुकों के दादियों को प्यार से, उनको आप हमारे घर चलो, हमारे परिवार को ज्ञान सो, उनका आप उद्धार करो। तो सामान रखा था तो सामान उठा के नीचे ले आए। बोले नहीं हमारा तो दादी ने कहा हमारा टिकट बना है फिर कभी आएंगे। नहीं आप कब फिर कब आ सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, आपको अभी ही चलना है। तो सामान उतार के अपना ट्रेन का टिकट कैंसिल करके फिर चलो भाई तांगा किया, तांगे में बैठ के चल पड़े। तो जब काफी समय चल रहे थे तो जोधपुर शहर हो गया, अभी साइट में चल रहे थे तो दादी गंगे दादी को थोड़ा सा मन में थोड़ा डाउट आया, भाई तुम्हारा कहाँ घर का है तुम्हारा? बोला वो नजदीक है, इधर ही नजदीक है। तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था तो बोले कहाँ बताओ? तो बोला यही हमारे सामने है ना, यही घर है, यही कोठी है। तो तांगा उधर खड़ा हो गया, तो उनको बोला कि क्या कहाँ है तुम्हारा परिवार, परिवार वालों को बाहर बुलाओ पहले, क्योंकि वो बोले नहीं नहीं चलो चलो, नहीं नहीं उनको बाहर बुलाओ फिर हम आएंगे। तो अंदर तो कोई था ही नहीं, खंडार मतलब मकान था ऐसे, तो कोई था ही नहीं। तो बोला बुलाओ बाहर, तो बोला नहीं नहीं आप ही चलो बुलाओ बाहर ऐसे। तो दादी दोनों दादियों को थोड़ा शक्ति रूप आए, निकालो बाहर ऐसे। तो उन्होंने पिस्तौल निकाला और बोला ज्यादा आवाज नहीं करो, ज्यादा बात नहीं करो, चलो चुपचाप। तो समझ में आया ये तो कुछ गड़बड़ वाला मामला है। तो तांगे वालों को बोला तुम यहां से हिलना नहीं, हम यहां है तब तक हिलना नहीं यहां से। फिर कुछ जैसे उन्होंने पिस्तौल दिखाया, बोला ये तुम्हारे पिस्तौल को हम डरते बढ़ते नहीं है, हमारे साथ कौन है पता है? स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान हमारे साथ है, तेरा पिस्तौल क्या है? जब उस समय उन दोनों को ये दादियों को कोई देवी का रूप नजर आए, कोई अलग रूप नजर आया, तो एकदम कांप गए और वहां से भाग गए। फिर वहां से वो तांगे वालों के साथ फिर वो दादियां वापिस आए, फिर मधुबन आए, बाबा के पास समाचार जब पता चल गया ऐसे ऐसे। तो बाबा ने कहा देखो कोई भी सेवा करनी हो कायदे मुझे करना होता है, ऐसे लालच में नहीं आना होता है। तो जो सिस्टमेटिकली सेवा होती उसी हिसाब से करना, नहीं तो ऐसे धोखा मिल जाता है। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी जो दुर्घटना होने वाली थी, क्योंकि उनके पास पिस्तौल था और कोई भी नहीं था, तो बाबा कैसे अपने बच्चों को बचाता है? बाबा पल पल, क्योंकि वो तो बाबा तो साथ था ही उनके, तो बाबा ने इतनी बड़ी घटना होने से बचाया। तो हर ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आई, लेकिन बाबा ने बचाते रहे और सेवाएं।
विदेश सेवा के निमित्त कैसे बनी थी दादी?
क्या हुआ, ये जो गंगे दादी भाषण करने में बहुत होशियार थी, तो अलग अलग जगह जब प्रोग्राम चलते थे, तो एक बार क्या हुआ जो ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी, उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप यहाँ एक कॉन्फ्रेंस है, पीस कॉन्फ्रेंस, आप इसमें थोड़ा लेक्चर दो। तो गंगे दादी को वहाँ भेजा गया और भी दो चार होते, लेकिन गंगे दादी को। तो क्या हुआ, दादी का भाषण सुन के इतना सब प्रभावित हो गए। उसमें से एक भाई था, वो जापान में जाता आता रहता था, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो उन दिनों में जापान में एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। तो जो आयोजक थे वहां के, तो उनको इसने, वो भाई ने लिखा कि आप ब्रह्मा कुमारी को भी निमंत्रण देना। तो उनका निमंत्रण बाबा के पास आया। तो बाबा के पास जब निमंत्रण आया तो भाई कौन जाएगा? तो बाबा ने फिर प्रकाशमणी दादी जी और रतनमणि दादी जी और आनंद किशोर दादा, क्योंकि आनंद किशोर दादा जी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, तो आनंद किशोर, ये तीनों को तैयार करके जापान भेजा। तो जब जापान गए तो गए तो 10-12 दिन के लिए, लेकिन ये जब ज्ञान सुनाते गए तो जहाँ कॉन्फ्रेंस में लोग आए थे तो उन्होंने कहा हमारे पास भी आओ। तो जापान में उनके 6 मास उधर ही निकल गए सेवा करते करते करते। फिर वहां से जब और सिंगापुर में निमंत्रण मिला, सिंगापुर से फिर हांगकांग में निमंत्रण मिला, हांगकांग से फिर वहां 2 मास निकल गए, फिर वहां से वो चेन्नई बोट से आए तो वहाँ खास बाबा ने जगदीश भाई जी और जानकी दादी जी को रिसीव करने भेजा कि उनको रिसीव करो। अब जब वो रिसीव करने वहाँ गए तो भाई कहाँ जाए, कोई ऐसा मकान बकान तो था ही नहीं। तो जो उतरने वाले थे वहाँ गवर्नर हाउस था नज़दीक, तो उन्होंने कहा यार गवर्नर हाउस के पास ही कर लेते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ताकि सारे पेपर वालों को थोड़ा पता चलेगा। तो उन्होंने सोचा भाई नंबर किसका दे, तो किसी को पूछा, वो सिक्योरिटी वालों को पूछा भाई गवर्नर हाउस का नंबर क्या है, तो उसने नंबर दिया गवर्नर हाउस का। तो ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा कि भाई इस नंबर से कॉन्टेक्ट करो तो हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो वो प्रेस वालों को तो पता था ये तो गवर्नर का नंबर, गवर्नर हाउस का नंबर है। तो बहुत सारे प्रेस वाले आ गए। जब प्रेस वाले आए तो फिर ये सारे न्यूज़पेपर में ब्रह्मा कुमारी जापान में सेवा करके आए, ब्रह्मा कुमारी सिंगापुर में सेवा करके, ब्रह्मा कुमारी मतलब ऐसे नाम बहुत हो गया। और नाम बहुत होने का कारण फिर भारत में सेवा शुरू होगी। तो ये सब गंगे दादी इस प्रोग्राम के
में जो वर्ल्ड
निमित्त बने कि कैसे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वहां होने वाली थी वहां से। तो ये हमारे विशेष हमारे गंगे दादी, तो गंगे दादी अंत तक सेवा करती रही और लास्ट में जैसे वो धार्मिक विंग की चेयरपर्सन भी रही और साथ साथ जो यूपी जोन की संचालक है मेन इंचार्ज के रूप में रही। तो इस प्रकार उन्होंने अंतिम समय तक, उन्होंने जो 8 अक्टूबर 2004 में बाबा की गोद में सदा काल के लिए बाबा की गोद में गई अपनी ये सेवाएं पूरी की।
थैंक यू सुभाष भाई, आपने गंगे दादी के जीवन से हम बहुत प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को भी ऐसे आदर्श बनाएंगे जैसे इन्होंने श्रीमत को बाबा की एक एक श्रीमत को पालन करके यज्ञ को तिनका तिनका जोड़ के इतना बेहद विशाल बनाया है। तो इन दादियों के जीवन से हम प्रेरणा लें और सच्ची श्रद्धांजलि भी यही है कि हम उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प आज लेंगे। थैंक यू।
आज हम यहाँ बैठे हैं ये किन की तपस्या है, आज उन दादियों ने, आप सोच सकते कि कहाँ जेल में, कहाँ नदी किनारे, कहाँ गंगा के तट पे, कोई सेंटर नहीं, कुछ नहीं। हाँ, और गुलजार दादी का भी ऐसे, सब दादियाँ कि पता नहीं बाबा ने सेवा में, बाबा पिताश्री ने हमको भेजा, बस ये कह के ये प्रेरणा लेके वो जाते थे। कुछ व्यवस्था नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई मतलब रहने का खाने का कुछ ठिकाना नहीं, लेकिन उनकी त्याग तपस्या से आज यहाँ इतने बड़े भवन बने, इतनी बड़ी सेवाएं हैं और सारे विश्व में उनके कारण बाबा की परिचय हो गया, बाबा का संदेश गया। तो आज इसी विशेषता के और हमारी जो गंगे दादी है इसका स्मरण करते हुए उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि हम अभी योग में अर्पित करेंगे।
ओम शांति। थैंक यू।